रूपम् रूपमतस्याकृतिपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधुवासं प्राप्तो यस्य प्रतीतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध श्रीमद्भागवत पाठ के तीन नियम हैं। एक तो नियम है सात दिन में इसको समाप्त किया जाए, एक नियम है इसका एक महीने का, और दूसरा नियम है तीसरा रोज रोज प्रतिदिन भागवत का अनुशीलन हो, पाठ हो। जो सात दिन वाला होता है बहुत संक्षिप्त होता है, और उससे अच्छा होता है एक महीने वाला, और उससे अच्छा होता है प्रतिदिन एक श्लोक, आधा श्लोक, आधा श्लोक का आधा, या एक शब्द का भी यथार्थ तात्पर्य यदि एक दिन में थोड़ा सा भी हो तो यह भजन के लिए बहुत अनुकूल और आत्म तत्व को देने वाला, भगवत प्रेम को देने वाला होता है। समझ बुझ करके किया जाए। मंत्रों का जप सभी लोग करते हैं, किंतु उस मंत्र का इष्ट देव कौन है, उस इष्ट देव से हमारा क्या संबंध है, और फिर उस इष्ट देव के प्रति हमारी प्रपत्ति हो, शरणागति हो, आत्मनिवेदन हो, ये पांच जो अंग हैं सबको अच्छी तरह से समझ करके मंत्र का जो जाप करता है वो झट सिद्धि होती है। अन्यथा ये चीज को नहीं जान करके जो करते हैं सिद्धि नहीं होती। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक मंत्र हैं, मंत्र हैं, सभी कृष्ण प्रेम को, तत्व ज्ञान को देने में सभी समर्थ हैं। इसका एक श्लोक का भी अर्थ अच्छी तरह से कोई समझ ले तो भी बहुत है, किंतु एक दिन क्या, दस दिन में भी, एक महीने में भी, एक वर्ष में भी, यदि थोड़ा सा यदि समझ में आ गया तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जैसे मैंने कल एक श्लोक हमने कहा, जो कि सुत गोस्वामी ने ऋषियों को कहा और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को कहा। वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शक्यते। चैतन्य चरितामृत में भी यह श्लोक को उद्धृत किया गया है। बहुत से लोग पाठ करते हैं, अधिकांश मेरे समझ से 95% जो पढ़ते हैं वो तो नहीं समझ पाते। 5% वालों में से कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग इसको उपलब्धि भी कर सकते हैं। बड़ा कठिन है, दार्शनिक इसमें इतने गंभीर विचार हैं कि उपनिषद जिसको वेदांत कहते हैं, वेदों का अंत सार, उस वेदांत शास्त्र का भी मंथन करके यह श्लोक मंत्र के रूप में है। पारिभाषिक श्लोक है ये, साधारण आदमी तो नहीं समझे, जो इसका अनुशीलन करते हैं, अपने गुरु से कुछ समझे होंगे, कुछ पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, इसको विचार कर वो तो समझ लेंगे। भगवान को जानने के लिए एक न एक दिन ये समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बिना समझे हुए इन चीजों को हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। अब इसमें एक एक शब्द ऐसे हैं जिनकी गंभीर तात्पर्य है, हजारों वर्षों तक साधना के द्वारा ही इनको उपलब्धि की जा सकती है, साधारण चीज नहीं है। अब जैसे यदि इसमें कहें तत्व विदह बदंती, तत्व लोग जो इसको तत्व को जानते हैं वो लोग ऐसा, अच्छा तत्वविद कौन है, तत्वविद किसे कहते हैं और वो क्या कहते हैं कि वदन्ति तत्वविद तत्त्वम यज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान जो तत्व है वही परतत्व है। अद्वय ज्ञान क्या कह तो दिया, अधिकांश में जो पाठ करने वाले होते हैं, जो गुरु से इन्होंने नहीं सीखा या दो चार सीख लिए पैसा रोजगार कमाने के लिए, भजन नहीं किया, ये खाक तनिक भी नहीं समझेंगे, उनको जरूरत नहीं अद्वैत ज्ञान तत्व समझने की ये क्या चीज है। यज ज्ञानम अद्वैत ज्ञान ही परतत्व है और उसी को ये तत्वविद्य लोग कोई कोई ब्रह्म, कोई कोई परमात्मा इति परमात्मा और कोई कोई उसको भगवान इति शब्द दे भगवान कहते हैं, उसी को ही पहले तत्वविद किसको कहते हैं, तत्वों को जानने वाले। तत्व क्या है, तत्व क्या है उसी को कह रहे, तत्व है क्या, जज ज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान ही परतत्व है, इससे बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है। ये अद्वय ज्ञान तत्व को इस रूप में कह सकते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, यही अद्वय ज्ञान तत्व है। किंतु तो भी इसमें ये पूरा नहीं आया, अद्वय ज्ञान पर तत्व, वो तत्व ऐसा है दो नहीं है, उसके समान भी कोई नहीं है, असमोध तत्व है, उसके समान भी कोई नहीं है, उसे बड़ा और उसके बराबर होने की तो बात ही क्या, और ये समस्त विश्व में एक ही तत्व है, दो नहीं, किंतु दो इसमें तो है दो न द्वय, दो जैसा प्रतिभास होता है किंतु दो नहीं। कोई ऐसा संसार में चीज है जो एक हो, एक शब्द का कोई उदाहरण है, एक कहे मैं एक हूं, ये इसमें पांच तत्व हैं और इस पांच तत्व में कितने तत्व भरे पड़े हैं और इनके बाद में इसमें मन बुद्धि अहंकार चित्त है और मन बुद्धि अहंकार चित्त एक एक में कितने तत्व भरे पड़े हैं और फिर उसके अंदर में आत्मा उसमें भी कितनी चीजें हैं और उस आत्मा के बाद में परमात्मा। एक शब्द है, एक में ए और क दो अक्षर हैं तो एक कहां रहा? ओ एन ई, इसमें तीन अक्षर से एक कहां रहा? कहो जो ऐसे खींच दो ये एक हो जाएगा। खींचने से भी उसमें बहुत से डॉट मिलकर के एक लाइन बनती है तो एक है कहां? है जगत में कोई ऐसा उदाहरण जो एक का उदाहरण हो? जो एक हो, समुद्र तो एक है, भारत महासागर एक है, पैसिफिक ओशन एक है, अटलांटिक ओशन एक है। अरे भाई उसमें कितना जल का एक एक परमाणु अलग अलग, उसमें कितनी मछलियां व्हेल और उसमें कितने कितने तरह के जानवर, कितने तरह की किए क्या चीजें हैं उस समुद्र में, कहने से एक नहीं, लाखों ड्रग्स करोड़ों ड्रग्स मिलकर के वो पानी बना। इसलिए एक नाम की कोई चीज नहीं है, किंतु हाँ एक चीज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन। तो ये समस्त जगत मिलकर के एक अद्वैय ज्ञान है वस्तु, और उस अद्वैय ज्ञान में एक परतत्व है सर्वश्रेष्ठ। दो चीज रहे जगत में तो उसमें हम कह सकते हैं इसमें भेद है। जगत में तो कोई दो चीज है ही नहीं, जो कुछ देखते हैं वो एक ही के अंतर्गत में है, एक ही के अंतर्गत। कैसे? अब इस चीज को जरा विचार कीजिए। जैसे एक अद्वैय ज्ञान परतत्व, एक ही है जो कि समस्त विश्व ब्रह्मांड जितने जीव जो कुछ दिखाई पड़ते हैं उसी के अंदर में समाविष्ट है, अलग से किसी की स्थिति नहीं है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है दो जिसकी स्वतंत्र एग्जिस्टेंस हो, स्वतंत्र सत्ता हो, कोई चीज जगत में नहीं, बस एक है वो, उसी के सत्ता के ऊपर में सबकी सत्ता है। वो है कौन? वही अद्वैय ज्ञान परतत्व भगवान स्वयं कृष्ण है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जरा खूब गंभीर रूप से सुनना, कहानियां तो लोग कह जाएंगे, इन तिथियों को समझ लाना, यदि समझ गए तो बस बेड़ा पार। अब इसी को समझाने के लिए कथा कहानियों के रूप में, कृष्ण की लीलाओं के रूप में सारा श्रीमद् भागवत, यही एक श्लोक है, इसी श्लोक के ऊपर में सारा श्रीमद् भागवत डिपेंड करता है, ये श्लोक, और इसी की व्याख्या टीका अत्यंत दूसरे श्लोक सब है, मूल श्लोक इसी पर विचार किया गया ना? तो कहते हैं इस जगत में कृष्ण के अतिरिक्त जितने भी भगवत अवतार हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितना ये विश्व ब्रह्मांड है, अखिल जीव हैं, किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं, उसी सत्ता के ऊपर में सबकी सत्ता है। जैसे जगत में राम कृष्ण बलदेव इत्यादि 24 प्रकार के अवतार बतलाए गए हैं, विष्णु इत्यादि तत्व हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लाखों देवता हैं, लाखों जीव हैं, बद्ध जीव हैं, मुक्त जीव हैं, एक ही ये विश्व नहीं है, लाखों कोटि विश्व ब्रह्मांड है, जो भगवान के एक लोम कूप में लाखों विश्व ब्रह्मांड निकलते हैं और कहां चले जाते हैं। बहुत अद्भुत। ब्रह्मा इत्यादि के द्वारा भी ये संभव नहीं है कि इनकी चिंता कर सकें, भगवान की एक एक विभूतियों को गिन सके। वो जो पर तत्व है पराशक्ति विविधैव श्रूयते, एक पर तत्व है, किंतु परतत्व होने पर वो कौन है? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम भगवान है, नारायण है भगवान, विष्णु भी भगवान है और सब लोग हैं भगवान है, किंतु स्वयं भगवान ये छोटा सा बालक बांसुरी बजाने वाला नंद का लाला नटवर श्याम सुंदरी की है, समस्त भगवत्ता की जड़ है वो, इसी की सत्ता के ऊपर में सबकी सत्ता निर्भर करती है, इसी के ऊपर में सब कुछ, यही स्वतंत्र सत्ता उसकी है। किंतु पराशक्ति विविधैव श्रूयते, उसकी अनंत शक्तियां हैं। शक्ति तो है एक है, परा पर वस्तु एक है तो उसकी शक्ति एक होगी, किंतु उसकी विविध वैचित्र है बहुत तरह की। जब जो काम करता है उसकी शक्ति, उस शक्ति के अनुसार में उसका नाम अलग बन जाता है। साधारण रूप में इसको तीन भागों में विभक्त किया, क्या? सत चित आनंद भगवान का यह स्वरूप माना गया। सत माने क्या पहले समझा जाए, सच्चिदानंद भगवान माने क्या? जिनकी सत्ता है, और वो सत्ता कैसी है? चिन्मय है, जड़ नहीं, कभी उसका ध्वंस विनाश रूपांतर नहीं होता है? उस सत वस्तु रहने से उसका नाम होगा, रूप होगा, गुण होगा, क्रिया होगा, जरूर होगा। जिसका नाम रूप गुण क्रिया नहीं है वो कोई सत्तु सत्ता ही नहीं है उसकी, कोई भी चीज हो उसका नाम रूप गुण क्रिया जरूर रहेगा, वो सत्ता हुआ। कृष्ण में यह सत्ता परिपूर्ण रूप में है और निरंतर नित्य है, एक रस है। चित, चित माने ज्ञान, जितना ज्ञान है सब ज्ञान का संपूर्ण समावेश कृष्ण में पर रूप में है। वैसा ज्ञान किसी में नहीं है। और आनंद, अभी आनंद की व्याख्या की जाए तो इसमें समय लग जाएगा। आनंद भी तीन प्रकार का, भौतिक आनंद, मानसिक आनंद और आत्मा का आनंद, और फिर परमात्मा का आनंद, फिर भगवान का आनंद। जिस आनंद के द्वारा वह तत्व आनंद का उपभोग करता है, दूसरों को भी आनंदमय बना देता है, उसकी उस शक्ति का नाम लादिनी शक्ति है, जो जिसके द्वारा वो परतत्व आनंद का उपभोग करता है, सदा आनंदमय उसका स्वरूप बना रहता है, और थोड़ा सा उसमें किसी में दे दे तो उसका जीवन भी आनंदमय हो जाता है, वो स्वयं आनंद का परिपूर्ण तत्व है। जब जिस शक्ति के द्वारा वो आनंद का उपभोग करता है उसको लादिनी शक्ति कहते हैं। जब वही शक्ति ज्ञान का प्रकाश अंतिम रूप तक ले जाती है, जैसे ज्ञान एक साधारण लौकिक ज्ञान, क्या लौकिक ज्ञान? बच्चा जब होता था, मैया ये क्या है, ये क्या है, एक हिरण को छत्ता हुआ कहते ये क्या है, ये जानने का नाम। इसके बाद में ये शरीर कहां से आया, आत्मा क्या चीज है, क्यों इस शरीर में आई, इन समस्त आत्माओं का कंट्रोल करने वाला कौन है, ये सब प्रश्न आते हैं। ये सब क्या है? ज्ञान धीरे धीरे होता जा, यही ज्ञान कुछ दिनों के बाद में परिपक्व होने के बाद में भाव के रूप में बदल जाता है, जो कि प्रेम हो जाता है। प्रेम क्या चीज है? ज्ञान है ना, ज्ञान की परिपक्व अवस्था में यही ज्ञान ये क्या चीज है, यह क्या चीज है, फिर दोनों वस्तुओं में जो प्रेम संपर्क है भाव, उसको प्रेम कहते हैं,
यही भगवत प्रेम हो जाता है।
ज्ञान का रूपांतरण भाव, और भाव से प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति से महाभाव इत्यादि सब, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, बहुत ऊंची स्थितियां हैं जिसके द्वारा कृष्ण भी वशीभूत हो जाते हैं। तो पराशर शक्ति, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, तीन उनकी शक्तियां हैं प्रधान। और चित शक्ति के द्वारा ये जगत तो छोटा सा है, बहुत, ये ब्रह्मांड जो देख रहे हैं ये बहुत छोटा है, एक पाद विभूति सारे ब्रह्मांड मिलकर के, लाखों लाखों ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक पाद विभूति। और चित जो जगत है जहां पर कि भगवान के लीला विलास, चिंत चित विलास होता है, उसे चित विभूति कहते हैं, वो तीन पाद है। तो जो शक्ति भगवान की नित्य काल तक भगवान के चित जगतों को, वैकुंठ जगतों को, उसमें भी राम लोक, कृष्ण लोक, कृष्ण लोक में भी गोलोक, द्वारका, मथुरा, वृंदावन इत्यादि धामों को नित्य प्रकाशित करती है, भगवत स्वरूपों को प्रकाशित करती है, और वहां पर नित्य सेवकों की, जो कृष्ण के परिकर हैं, उनको प्रकाशित करती है, उसका नाम है चित शक्ति। वो लोग कभी जड़ जगत में नहीं आते, आते हैं तो जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, उनसे जड़ का कोई संपर्क ही नहीं है। और एक दूसरी शक्ति होती है जिसको जीव शक्ति कहते हैं। जीव शक्ति के द्वारा भगवान की इच्छा से लाखों मुक्त जीव, अगिनत ऐसे जीव जो भगवान की सेवा में सब समय आनंद में मग्न हैं, वो नहीं जानते कि ये माया क्या चीज है, इसमें जन्म और मरण क्या चीज है, दुख क्या है, सुख क्या है, वो नहीं जानते। वो सभी कृष्ण के, कृष्ण आराध्य उनके हैं, राधा जी उनके आराध्य हैं, किसी न किसी रूप में। तो ये जीव शक्ति से, तटस्था शक्ति से ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जो इस माया जगत में भूल जाते हैं, भगवान को भूले हुए रहते हैं, सत्संग के द्वारा भगवान की तरफ में आते हैं, सत्संग के द्वारा संत लोग उनके हृदय में भक्ति का बीज बोते हैं। वो बीज क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा माने क्या? कृष्ण को, कृष्ण की सेवा करने से हमारा जीवन सारा संपूर्ण हो जाएगा, ये कृष्ण सेवा की वासना का नाम है श्रद्धा। ये जीवों के हृदय में बो देते हैं, सुनते 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 सारा। हम ऐसे लाखों जन्मों तक संसार करते रहेंगे तभी हमें सुख और शांति नहीं होगी। अरे तुम्हारी की बात क्या, रावण जैसा आदमी जिसके नगर परकोटे घर सब सोने और विदु मणियों के बने हुए थे, जिसको 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और लाखों स्त्रियां हैं, सुखी नहीं रह सका, तो हमारी आपकी विषाद क्या? हिरण्यकशिपु जैसा वज्र का शरीर, नित्य नौजवान रहेगा, लाखों वर्ष की आयु, कोई उसे मार नहीं सकता, दिन में नहीं मार सकता, रात में नहीं मार सकता, आकाश में नहीं मार सकता है, पाताल में नहीं मार सकता, हवा में नहीं मरेगा, पानी में नहीं मरेगा, समुद्र में नहीं मरेगा, पहाड़ पर नहीं मरेगा, कोई भी ब्रह्मा का बनाया हुआ प्राणी उसे नहीं मार सकता, ऐसा वर लिया हुआ, 1 सेकंड नहीं लगा, संसार का सुख नहीं भोग सका। इसलिए हमारी आपकी तो बात क्या है, हम सुख नहीं भोग सकते, शांति और सुख नहीं आएगी। बारी मथे बरुहो यघृत सिकताते बरुतेल, देनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अभेद। इस चीज को समझ, लाख ज्ञानी हो, लाख गुणी हो, लाख वैभव वाले हो, बिना हरि भजन के तुम्हारा उद्धार नहीं, कल्याण नहीं हो सकता, इस चीज को समझो। तो ऐसा समझ करके जो भगवान का भजन स्मरण करते हैं, इस मर्त्य जगत को छोड़ करके सारे प्रॉब्लमों के सिर पर पैर रख करके भगवान की तरफ में जाते हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं नित्य काल उनका भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं कृष्ण, वो परम सुखी हैं, जन नहीं जानते कि जन्म मरण क्या है। और एक तीसरी शक्ति है जो खित जल पावन गगन समीरा पंचरे तजिया अदम शरीरा खिति अपते मरु। इनके द्वारा इस पांच भौतिक शरीरों की सृष्टि कर करके ऐसे लाखों करोड़ों जगतों को उत्पन्न करती है, उसको माया शक्ति कहते हैं। और माया शक्ति में अभी समझिए, माया माने भगवान की एक ही शक्ति है, दो नहीं। जब इस मुख विमुख जीवों को ये संसार कारागार में जन्म लेकर के पीस रही है तो उसको महामाया कहते हैं, वही दुर्गा काली इत्यादि के नाम से जानी जाती है। अपनी शुद्ध अवस्था में वही जोग माया है, वही कृष्ण की भगवान की वो पराशक्ति है, वो विविध रूपों में ये सब काम कर रही है। तो ये सारे जो जितने जड़ जगत हैं, जितने जीव हैं, जितने देवता लोग हैं, देवता लोग उनकी विभूतियां हैं, और जितने भगवत तत्व अवतार इत्यादि हैं, सब मिलकर के एक ही उसमें पर तत्व है। कौन? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जिनकी भगवत्ता से राम नृसिंह कल्कि वामन परशुराम और वैकुंठ आदि से नारायण की भगवत्ता है, विष्णु की भगवत्ता है, जिससे परमात्मा की परमत्ता है और ब्रह्म का ब्रह्मत्व है, वो एक ही है। कौन है वो? वही बंसीधारी नवकिशोर नटवर गोप वेश, वही एक है। इसलिए इसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान परतत्व। न तत् समस्त अधिकस्य दृश्यते, वेदांत और उपनिषद कहते हैं उसके समान और कोई परतत्व नहीं। असमोर्ध्व असम ऊर्ध्व, जिसके बराबर कोई नहीं है, बड़ा होने की तो बात ही क्या, ये कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा गैर वृंदावन में था नहीं, में इनको मिला, चरणों में नतमस्तक हो गए, इनका वैभव देखना चाहा, नहीं था पास, इसलिए चरणों में एक बरस तक इनकी लीला को देखते रहे, समझ नहीं सके। शंकर जी भोलेनाथ गोपीश्वर गोपी बन करके गए, और लोगों की तो बात क्या है। विष्णु को मोह नहीं होता, इसलिए उनको कभी नहीं मोह हुआ। देवताओं को मोह होता है, इंद्र इत्यादि को मोह हुआ, कामदेव को मोह हुआ, सब पराजित हुए कृष्ण से। इसलिए अंत में निर्णय किया गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम। यही वेदों के प्रतिपाद्य विषय है, गीता में इसको कहा गया, क्या कहा गया गीता में? मैं ही वेदों का नहीं, वेदस्य सर्वम अहम एव वेद्यः, वेदों का सर्वस्व का प्रतिबंध। अंत में कहा अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात जन्मादस्य जतः, सबके मूल वो परतत्व है। इसलिए कृष्ण को ये समझना, कृष्ण ये ऐसे नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ये समझना, जो विष्णु तीनों में परतत्व हैं, ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, शंकर जी कभी जीव ही तत्व हो सकते हैं, कभी विष्णु भी तत्व होते हैं, इसलिए तीनों में बीच में जो विष्णु बैठे हैं वो तीनों में श्रेष्ठ हैं। और ये जो विष्णु हैं वो कृष्ण के अंश के अंश के कला के कला के विकला के विकला हैं, ऐसा समझो। किंतु तत्वता इस विष्णु से ही उनका भेद है। इसमें ब्रह्म क्या किसको कहते हैं? ब्रह्मा केवल ज्ञान नेत्र से जिनको देखते हैं, भगवान के सच्चिदानंद हैं, उसमें से केवल चीज वस्तु को थोड़ा सा आंशिक विकृत प्रतिफलन को जो देखते हैं वो ब्रह्मवादी होते हैं। ज्ञान नेत्र से भगवान का रूप नहीं दिखता, गुण नहीं दिखता, वो केवल ज्योति के समान उनको, वो क्या चीज है, कृष्ण के नख चंद्रिका की ज्योति है। वेदांत सूत्र में भी ऐसा कहा गया, जस्य प्रभा प्रभावतो जगत, जिनके नख चंद्रिका कृष्ण की, उस चंद्रिका की एक अद्भुत विकृत प्रतिफलन जो है ये ब्रह्म है। ब्रह्म की प्रतिष्ठा स्वयं ये कृष्ण है, गीता में बतलाया ब्रह्मणो प्रतिष्ठा इस ब्रह्म की। ये सब अद्वैत ज्ञान पर तत्व को जानने में ये सब मिला करके तब ये समझो, ब्रह्म कृष्ण का एक चरणों की छटा एक ज्योति है मात्र, और परमात्मा क्या है, वही उसी का एक खंड अंश जिसमें सत और चित का अंशी भाव है, जिसमें कुछ रूप है और कुछ ज्योति दोनों मिली हुई अंगुष्ठ परिमाण में। योगी लोग ध्यान के द्वारा उस विष्णु का दर्शन करते हैं, योग के द्वारा, और भक्ति योग के द्वारा प्रेमांजनक छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम। भक्त लोग क्या करते हैं, प्रेम रूपी अंजन के द्वारा, इन आंखों से नहीं, आत्मा के द्वारा, प्रेम रूपी अंजन के द्वारा क्या देखते हैं, अद्भुत श्याम सुंदर बंशीधारी नटवर, जिसको देखने से हिरण मात्र भी, प्राणी मात्र मुग्ध हो जाते हैं, ये परतत्व कृष्ण है। अब कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये क्या है, ये क्या चीज है, अधिकांश लोग नहीं समझते। कर्म किसको कहते हैं, कर्म योग किसको कहते हैं, ज्ञान योग किसको कहते हैं, भक्ति योग नहीं समझते। आजकल दिल्ली में इधर उधर, विशेष करके मैं गया सिंगापुर इत्यादि में, चाइनीज प्रदेशों में, जापान में, इधर उधर में, योग की प्रक्रिया भारत वाली ये चल रही है खूब जोर से, उसका ऊपरी भाव ले रहा, भीतरी भाव तो ले नहीं रहे। पहले योग समझिए, कोई एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु को जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं योग, ठीक है कि गलत, ठीक है ना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ी जाए तो इसको कहते हैं योग। जैसे एक और एक कितना हुआ, और यदि हम कहें ये एक और एक एक होता है तो गलत है, योग नहीं हुआ ना? इसलिए कोई जोड़ने के लिए जब दो वस्तु है तब उसको कहेंगे योग। जब हम अपने कर्मों का योग उस प्रभु से कर देते हैं, अपना कर्म उस प्रभु के लिए करते हैं तो इसको कहते हैं कर्म योग। और जब तक नहीं किए होते हैं, जब तक कोई भी काम जैसे श्वास लेना, देखना, सुनना, बाजार जाना, नौकरी करना, पैसे लाना, संसार चलाना, जब तक अपने लिए या शरीर से संबंधित लोगों के लिए करते हैं तब तक ये कर्म है, इस चीज को समझिए। कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कर्म, यथार्थ कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। जब आप शुद्ध कर्म, जो वैदिक कर्म है जिसके द्वारा जगत का और आपका कल्याण न हो, कल्याण हो तो उसको जब करते हैं तब इसको कहते हैं कर्म। जैसे पिता माता की सेवा और कुछ दूसरों लोगों के लिए कोई दान पुण्य का, जगत के भलाई के लिए आप करते हैं तो इसको कहेंगे कर्म। जब अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए, शरीर के भला के लिए कुछ करेंगे, अच्छा कर्म जिसको वेदों में कहा गया है, माना गया है शुभ कर्म, माता पिता की सेवा और सब जितने कर्म हैं, दान है, पुण्य है, गरीबों के लिए, ये सब कर्म है। किंतु इसमें अपने लिए करते हैं तब तो ये कर्म है ना? यदि ऐसे कर्मों को नहीं करते तब इसको कहते हैं अकर्म। अकर्म कर्म किए बिना रह नहीं सकते, चाहे कर्म करें, विकर्म करें, चाहे अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जब अच्छे कर्मों को नहीं करते हैं इसका नाम अकर्म, और जब बुरे कर्मों को करते हैं जिसको निषिद्ध किया गया है उसको क्या कहेंगे?
विकर्म,
कर्म का उल्टा, विरोधी। अब जो अच्छे कर्म हैं उन कर्मों को अपने लिए करते हैं तब तो वो कर्म है, और जब यही भगवान के लिए करते हैं जो कुछ कर्म ये संसार का भी, तो कर्मों के साथ में भगवान का योग हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कर्म योग। समझ रहे हैं? जैसे आपने एक स्कूल किया, अस्पताल खोले, माता पिता की सेवा की, ये शुभ कर्म है। किंतु आपने देखा ये समस्त जगत के पिता तो प्रभु हैं, इसलिए पिता को हम यदि ये कर्मों का हम फल दे देते हैं तो हमारे माता पिता संसार के सभी लोग सुखी रह सकते हैं। इसलिए जो जो कर्म करते हैं उसका फल लेकर के भगवान को अर्पण किया, तत् नारायणम तत् तत् समर्पय, अथवा भगवान के लिए ही करते हैं, अपना बेटा है, समझा जी हम तो भगवान के दास हैं, हमारा बेटा भी भगवान का दास है और किसी कारण से हमारे पास में आया है तो इसकी हम सेवा करेंगे तो इससे भगवान खुश रहेंगे, इसलिए इसको हम अच्छी शिक्षा दें, पढ़ाएं लिखाएं, कर्तव्य, ये आपका कर्म योग हो गया। आपने एक बगीचा लगाया, फल हुआ, आपने कहा जैसे भाई ये प्रतिदिन इसका फल भगवान की सेवा में मंदिर में जाएगा, अपने लिए नहीं किया, अब क्या हुआ, और यदि कुछ प्रसाद मिल जाए तो हमारे पास में ले आना, ये कर्म योग हो गया। ऐसे ही कर्म करते 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 बुद्धि जब शुद्ध होगी, हृदय साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, संसार की जितनी भी बुराइयां हैं सब दूर हो जाएंगी, तो धीरे धीरे ये ज्ञान योग में परिणत हो जाएगा। ज्ञान योग किसको कहते हैं? अपना जो बुद्धि है, ज्ञान है, विचार है, सबको भगवान के लिए लगाओ। सोचो ये जगत कहां से आया? प्रभु से। इसलिए जो कुछ भी सोचो, विचार करो, देखो, उसको उसके अंदर में तुम भगवान की सत्ता को पाएगा। इस प्रकार से जो कुछ भी ज्ञान के द्वारा उपलब्ध होता है भगवान के साथ में उसे लगाओ तो ये ज्ञान योग। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कर्मयोग से अच्छा है क्या, कर्मयोग के लिए बतलाया, यज्ञार्थात कर्मणो लोकय मनत्तर कर्म बंधना, जो कर्म तुम भगवान के लिए नहीं करते हो अपने लिए करते हो ये बांध देगा तुम्हें, पीस देगा जन्म जन्मांतर में। इसलिए सभी कर्मों को समझ करके भगवान के लिए करो, जो कुछ कर रहे हो, या उसका फल भगवान के लिए दे दो। ऐसा करते 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 तुम्हें जन ज्ञान योग उपस्थित होगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, देखेगा कि ये सब विश्व ब्रह्मांड तो भगवान में ही है। इसलिए बहुना जन्म नाम अंते ज्ञान माम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा, ये सभी का मूल उद्गम स्थान तो प्रभु है वासुदेव, उसी में सारा विश्व वास करता है। हम लोग कहां वास कर रहे हैं? सचमुच हम लोग समझ नहीं पाते किंतु हम वासुदेव में ही हैं, और वासुदेव ही हमारे अंदर में है। वो ऐसा है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महत्व आप महियान अनोरपी अनियान, अणु सभी अणु, ऐसा दूसरा वस्तु नहीं है, हमारे अंदर है, हम उसके अंदर में है। इसके बाद में कहते हैं योगिनां सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मान, कर्मी योगी से भी अधिक योगी श्रेष्ठ है, उससे भी ज्ञानी योगी से भी श्रेष्ठ ये योगी है। सब योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है?
योगिनां भी सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना,
जो अंतर से सब समय
हमारा ही चिंतन करता है और सब कुछ हमको ही अर्पण करके दिन रात हमारी चिंता में मग्न है। मदगतेन अंतरात्मन, अंतर आत्मा के द्वारा सब समय मदगतेन, मदगतेन मेरे अंदर में उसकी बुद्धि सब समय भगवत चिंतन करता है। ये समस्त ये क्या किया, अपने को योग कर दिया उस योग के द्वारा भगवान के साथ में। आजकल के लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर लिया, थोड़ा ऐसा कर लिया, सिर घुमा लिया, पैर को इधर उधर संचालन कर लिया, एक साथ में थोड़ा सा दौड़ लिया और व्यायाम, पैर को उठाओ ऐसे करो फिर नीचे गिरा दो। ये योग किसके साथ में है, ये योग कैसे हुआ, ये तो कसरत है, जो कहां हुआ। जब एक वस्तु के साथ दूसरी मिलती तब तो इसमें मिली कहां। यदि अपने कर्मों का योग भगवान से कराते, अपने आत्मा का योग भगवान से कराते, अपने ज्ञान का योग भगवान से कराते, ये योग हैं। और इन योगों में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग माने क्या, प्रेम के द्वारा कृष्ण को अपने को मिला देना, बांधना, इसको कहते हैं भक्ति योग। भक्ति एकमात्र योग है, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, और इन सब में अनायास ही हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव, बड़ी जोर से देखा, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, और अंत में एव, और कोई गति नहीं, गति नहीं, गति फिर भी हमको विश्वास नहीं है। तुम हमारे ही बेटे हो, हमारे ही बेटे हो, निश्चित ही हमारे बेटे हो, और तब कहता मैं तो तुम्हारा बेटा नहीं, क्योंकि समझता नहीं है। इसलिए तीन बार इसमें कहा गया, सब जितने भी योग हैं भक्ति योग में भी श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणम इत्यादि इसमें बतलाया, किंतु इसमें भी भगवान का नाम स्मरण करते करते भगवान ने अपनी सारी शक्तियां उसी में दे दी है। यही अद्वैत ज्ञान तत्व को जानने के लिए सबसे अधिक श्रेष्ठ उपाय है, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान है। ये कीर्तन के द्वारा ही होता है, इसलिए थोड़ा सा कीर्तन तो कर लीजिए, जय जय राधा रमण, अथवा आप लोग भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अब इसी के प्रमाण स्वरूप कैसे इस अद्वैत ज्ञान तत्व को जाना जाता है। यदि कृष्ण को जान लिया, नारायण तत्व उसी में है, राम तत्व उसी में है, बलदेव तत्व उसी में है, कल की बारा निशिंग सब उसी के, और उनकी विभूतियां जितने हैं इंद्र प्रभृति देवता लोग, जितनी भी शक्तियां दुर्गा काली और ये सब शक्तियां लक्ष्मी रमा, सब उस एक अद्वैत ज्ञान के अंदर में स्थित है, कैसे जाना जा सकता है। बिना गुरु के नहीं होगा, बिन गुरु भवन धी तरेन कोई, ज्यो तिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, शंकर के समान भी ज्ञानी हो, बिना गुरु के नहीं होगा। और गुरु भी होना चाहिए कैसे, मैंने कल बतलाया था या परसों बतलाया था, अनुभव, संसार की आसक्ति से दूर, परतत्व की अनुभूति संपन्न, भगवान का भजन करने में निविष्ट रहने वाले, इनकी संसार की किसी भी वैभव इत्यादि की आवश्यकता, ऐसा यदि व्यक्ति गुरु हो तो उसके द्वारा इस तत्व को जान सकते हैं। और उसी गुरु के प्रति यदि अवज्ञा हो तो सर्व चौपट। आप लोग जानते हैं, एक बच्चा था, शूद्र कुल में जन्म हुआ, 5 वर्ष का हुआ, कुछ अच्छे बड़े संस्कार थे, मैया सत्य में गोदी में चिपकाए रहती और दूसरों के घर में बर्तन माजा करती, रसोई चौका कर देती, और उसी से जो कुछ मिलता है जीवन का निर्वाह करती, बच्चे को भी पालन कर। ये जानते हैं कौन थे? ये नारद दूसरे जन्म में, दूसरे या तीसरे जन्म में। पहले के जो नारद उत्पन्न हुए ये ब्रह्मा जी के गले से, गला माने स्वर, गला माने क्या होता है स्वर, शब्द ब्रह्म से, उनसे ये नारद जी। इसीलिए कीर्तन इतना करते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान का, इसलिए उसके ये सप्त ब्रह्म के ये अवतार हैं। कुछ दिखलाने के लिए, लीलाओं को दिखलाने के लिए एक जीव का कैसे कल्याण होता है, इसीलिए एक शूद्रानी के घर में जन्मे, 5 वर्ष हुए। मैया दिन रात गोदी में चिपकाए रहती है, दूसरों को घर में चौका भाषण करती और फिर उसको भी खिलाती पिलाती अपना पास। बड़े सौभाग्य से उस गांव में कुछ ऋषि महर्षि लोग आए, वर्षा काल था, भारतवर्ष में वर्षा काल साधु संत लोग कहीं नहीं जाते हैं, एक जगह पर रह करके अपना साधारण संजन करते हैं, इसको चातुर्मास्य व्रत कहते हैं। 8 महीने तो संसार का काम करेंगे लोग, किंतु हम ऐसे संसार को चलाएंगे जिससे कि 4 महीने के लिए हमको छुट्टी मिली और भगवत चिंतन करें। इसलिए चातुर्मास्य, चाहे गृही हो भारतवर्ष में, चाहे त्यागी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी हो, चातुर्मास्य व्रत करता है। एक आदमी थोड़ा सा कुछ कमा लेता है और उसी से सारे परिवार का पालन पोषण करता है। अब तो अजीब तमाशा है, मियाँ जी कमा रहे हैं, बीबी कमा रही है, बच्चे कमा रहे हैं, लड़की कमा रही है,